नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाटरी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द इन्फॉर्मेशन डाइट क्ले ए जॉनसन की गैर कथा पुस्तक है, जो डिजिटल युग में सूचना के साथ हमारे संबंध की पड़ताल करती है। इसका मूल तर्क सीधा लेकिन प्रभावशाली है। हम भोजन की तरह ही सूचना भी आदत, स्वाद और सुविधा के आधार पर ग्रहण करते हैं, न कि हमेशा उसकी गुणवत्ता के आधार पर। जैसे अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही सनसनीखेज, पक्षपात पुष्ट करने वाली और निरंतर आती सूचना समझ, ध्यान और नागरिक विवेक को कमजोर कर सकती है। जॉनसन सूचना की कमी को मुख्य समस्या नहीं मानते, बल्कि चयन की कमी और निष्क्रिय उपभोग को समस्या बताते हैं। पुस्तक मीडिया, राजनीति, विज्ञापन और ऑनलाइन व्यवहार के बीच संबंधों को समझाते हुए पाठक को अपनी सूचना आदतों की जिम्मेदारी लेने को कहती है। यह केवल स्क्रीन समय घटाने की सलाह नहीं देती। इसका लक्ष्य स्रोतों को परखना, ध्यान को प्रशिक्षित करना और उपभोग के बजाय विचारपूर्ण खोज तथा सृजन की आदत बनाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले सूचना मोटापा, मात्रा से अधिक गुणवत्ता की समस्या। जॉनसन का सबसे विशिष्ट विचार सूचना मोटापा है। इस रूपक के माध्यम से वे बताते हैं कि अधिक सूचना अपने आप में अधिक ज्ञान नहीं बनाती। जब व्यक्ति लगातार सुर्खियां, टिप्पणियां, वायरल सामग्री, अलर्ट और विचारधारात्मक बहसें ग्रहण करता है, तो उसके पास तथ्य समझने या उनका संदर्भ जांचने के लिए कम मानसिक स्थान बचता है। भोजन उद्योग स्वाद, सुविधा और त्वरित संतुष्टि को बेचता है। इसी तरह ध्यान आधारित मीडिया भावनात्मक प्रतिक्रिया, क्लिक और बार बार वापसी को प्रोत्साहित करता है। परिणाम यह हो सकता है कि व्यक्ति बहुत कुछ जानने का अनुभव करे, लेकिन जटिल मुद्दों पर उसकी समझ सतही रहे। पुस्तक इस समस्या को केवल तकनीकी अतिरेक नहीं मानती। यह उपभोक्ता की पसंद, मीडिया के प्रोत्साहनों और व्यक्तिगत आदतों, तीनों का संयुक्त परिणाम है। इसलिए समाधान हर सूचना माध्यम को त्यागना नहीं है। समाधान यह पूछना है कि किसी सामग्री का उद्देश्य क्या है, वह किस प्रमाण पर टिकी है और उसे देखने के बाद पाठक अधिक सक्षम हुआ है या केवल उत्तेजित। यह दृष्टि मात्रा को ज्ञान का संकेतक मानने की आदत पर सीधा प्रश्न उठाती है। दूसरा, पुष्टिकरण, पूर्वाग्रह और राय आधारित मीडिया का आकर्षण। पुस्तक का एक केंद्रीय पक्ष यह है कि लोग अक्सर ऐसी सूचना चुनते हैं जो उनकी पहले से बनी धारणाओं की पुष्टि करे। जॉनसन इस प्रवृत्ति को भोजन की लालसा से जोड़ते हैं, क्योंकि वैचारिक सहमति भी तत्काल सुख और सुरक्षा देती है। विपरीत प्रमाण या असुविधाजनक दृष्टिकोण को समझने में मानसिक प्रयास लगता है, इसलिए राय प्रधान मीडिया दर्शकों को अपने साथ बनाए रखने में सफल रहता है। पुस्तक राजनीतिक समाचारों के उदाहरणों से दिखाती है कि मीडिया संस्थान केवल तथ्य नहीं पहुंचाते, वे विशेष फ्रेम, भावनाएं और पहचान भी बेच सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर दृष्टिकोण समान रूप से विश्वसनीय है या पाठक को हर दावे के प्रति निष्कर्षहीन रहना चाहिए। जॉनसन का आग्रह है कि पाठक अपने स्रोतों की वैचारिक दिशा और व्यावसायिक हित पहचाने। किसी विषय पर अलग मत पढ़ना केवल बहस जीतने के लिए नहीं, अपनी समझ की कमजोरियां खोजने के लिए उपयोगी है। इस प्रकार पुस्तक मीडिया साक्षरता को निष्पक्ष दिखने का प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रमाण, संदर्भ और अपने पूर्वाग्रहों की नियमित जांच मानती है। यह नागरिक निर्णयों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमजोर सूचना आदतें सार्वजनिक चर्चा को नारे और खेमों तक सीमित कर सकती है। तीसरा, इन्फोविगनिज्म, मूल स्रोतों के निकट जाने का सिद्धांत। जॉनसन इन्फोविगनिज्म शब्द का उपयोग ऐसी सूचना आदत के लिए करते हैं जिसमें व्यक्ति यथासंभव मूल स्रोत के निकट जाने की कोशिश करता है। इसका आधार यह समझ है कि सूचना जब कई स्तरों पर संपादित, संक्षिप्त और टिप्पणी सहित प्रसारित होती है, तो उसमें संदर्भ खोने या विकृति आने की संभावना बढ़ती है। किसी नीति के बारे में केवल बहस देखने के बजाय संबंधित दस्तावेज, आंकड़ा, भाषण या प्राथमिक रिपोर्ट देखना इस दृष्टि का उदाहरण है। इसका यह अर्थ नहीं कि हर व्यक्ति हर विषय पर विशेषज्ञ शोधकर्ता बन जाए। पत्रकारिता, विश्लेषण और व्याख्या उपयोगी है, विशेषकर जब वे जटिल तथ्यों को सुलभ बनाते हैं। पर पुस्तक पाठक को यह फर्क समझने को कहती है कि कौन सी सामग्री प्रत्यक्ष प्रमाण है, कौन सा विश्वसनीय विश्लेषण है और कौन सी केवल प्रतिक्रिया या प्रचार है। स्रोत के निकट जाने की आदत शीर्षकों के आधार पर राय बनाने से रोकती है। साथ ही यह पूछने की क्षमता विकसित करती है कि आंकड़े कहां से आए, चयन किसने किया और किसी दावे से किसका हित सत्ता है। आज के तीव्र सामाजिक माध्यम परिवेश में यह विचार विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि साझा की जाने वाली सामग्री अक्सर अपने मूल संदर्भ से अलग होकर पहुंचती है। चौथा, अटेंशन फिटनेस और सूचना उपभोग की समय सीमा। पुस्तक ध्यान को सीमित और प्रशिक्षित की जा सकने वाली क्षमता के रूप में देखती है। जॉनसन के अनुसार लगातार संदेश, ईमेल, समाचार और सामाजिक माध्यम जांचने की आदत व्यक्ति को प्रतिक्रिया प्रधान बनाती है। काम के बीच बार बार सूचना लेने से केवल समय नहीं जाता बल्कि मन को मुख्य कार्य में लौटने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसके उत्तर में वे अटेंशन फिटनेस का विचार रखते हैं, अर्थात ध्यान को उसी तरह धीरे धीरे विकसित करना जैसे शारीरिक क्षमता विकसित की जाती है। आरंभिक छोटे केंद्रित अंतराल, सूचनाओं से दूर समय और स्पष्ट सीमाएं इस अभ्यास के उपकरण हैं। वे सूचना उपभोग के लिए तय समय खिड़कियों का भी समर्थन करते हैं ताकि समाचार, संदेश और मनोरंजन पूरे दिन में अनियंत्रित रूप से ना फैले। पुस्तक में सुझाया गया बहुत छोटे काम और विश्राम अंतराल वाला अभ्यास सभी लोगों या सभी प्रकार के कार्यों के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं माना गया है। कुछ समीक्षकों ने ठीक ही कहा कि गहरे काम के लिए लंबे अविराम समय की जरूरत होती है, फिर भी मुख्य सिद्धांत उपयोगी है, ध्यान अपने आप सुरक्षित नहीं रहता। व्यक्ति को नोटिफिकेशन, उपकरणों और दिनचर्या के स्तर पर ऐसी व्यवस्था बनानी होती है जो निरंतर विचरण को सामान्य न बनाए। अंत में उपभोक्ता से सर्जक बनने और मीडिया अर्थशास्त्र को समझने की चुनौती, जॉनसन सूचना समस्या को व्यक्तिगत अनुशासन तक सीमित नहीं रखते। वे यह भी देखते हैं कि विज्ञापन और ध्यान पर निर्भर मीडिया व्यवस्था ऐसी सामग्री को पुरस्कृत करती है जो अधिक क्लिक, प्रतिक्रिया और समय खींचे। इसीलिए उत्तेजक शीर्षक, सरलीकृत संघर्ष और वैचारिक पुष्टि अक्सर शांत, संदर्भपूर्ण सामग्री से अधिक दिखाई देती है। पुस्तक का निहित तर्क है कि बेहतर मीडिया की मांग बेहतर उपभोग से शुरू होती है। यदि दर्शक लगातार निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री को समय और साझा करने के माध्यम से पुरस्कृत करेंगे तो उसकी आपूर्ति बनी रहेगी। इस संदर्भ में जॉनसन सृजन को उपभोग का संतुलन मानते हैं। दिन की शुरुआत में कुछ लिखना, सोचना या बनाना व्यक्ति को सामग्री की अंतहीन धारा का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बनने से रोक सकता है। सृजन का अर्थ केवल सार्वजनिक लेखन नहीं है, यह किसी समस्या पर नोट बनाना, प्राथमिक स्रोत पढ़कर सार तैयार करना या विचार को जांचने योग्य रूप देना भी हो सकता है। हालांकि पुस्तक की राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ पाठकों को अधिक प्रमुख लग सकती है, वही पृष्ठभूमि उसके बड़े प्रश्न को स्पष्ट करती है। सूचना आदतें निजी उत्पादकता के साथ साथ सार्वजनिक निर्णयों और लोकतांत्रिक संवाद की गुणवत्ता को भी आकार देती है। निष्कर्ष में, द इन्फॉर्मेशन डाइट उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो लगातार समाचार, सामाजिक माध्यम, ईमेल या राय आधारित सामग्री के बीच रहते हुए भी स्वयं को पर्याप्त रूप से सूचित नहीं महसूस करते। यह ज्ञान कर्मियों, विद्यार्थियों, प्रबंधकों, संचार पेशेवरों और सार्वजनिक मामलों में रुचि रखने वालों के लिए विशेष प्रासंगिक है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह सूचना अतिरेक को एक अस्पष्ट आधुनिक शिकायत की तरह नहीं छोड़ती। यह स्रोत चयन, उपभोग की सीमा, ध्यान की रक्षा और पूर्वाग्रह की जांच जैसे ठोस प्रश्न सामने रखती है। इसका बौद्धिक लाभ इससे भी व्यापक है। पाठक को यह पहचानने में मदद मिलती है कि सूचना केवल तथ्य नहीं बल्कि आदतों, प्रोत्साहनों और पहचान से बना वातावरण है। समान श्रेणी की उत्पादकता पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान यह है कि यह केवल कम स्क्रीन समय या बेहतर एकाग्रता की बात नहीं करती। जॉनसन व्यक्तिगत ध्यान को मीडिया के व्यावसायिक ढांचे और नागरिक विवेक से जोड़ते हैं। भोजन का रूपक कभी कभी अधिक खिंचा हुआ और पुस्तक की राजनीतिक चर्चा कुछ पाठकों को असंतुलित लग सकती है, फिर भी इसका केंद्रीय प्रश्न टिकाऊ है। हम जो पढ़ते, देखते और साझा करते हैं, क्या वह हमारी समझ को पोषित कर रहा है या केवल हमारी प्रतिक्रियाओं को? इस प्रश्न के कारण पुस्तक अपने प्रकाशन काल के बाद बदले डिजिटल परिदृश्य में भी विचारपूर्ण मीडिया साक्षरता की उपयोगी शुरुआत बनी रहती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं क्लेया जॉनसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।